मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। आज 12 अप्रैल 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 4 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाले क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं अनमोल तमोरी, आपका गांव है नगला लेखराज जिला आगरा उत्तर प्रदेश, सैफ अहमद आप गया बिहार से हैं, रोशन कुमार आपका गांव है करुणाबासा आलमनगर जिला मधेपुरा बिहार और ऋषिपाल धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं न्यूज सेक्शन में आऊं, चूंकि आज फ्राइडे है तो मैं कुछ सूचनाएं आप लोगों को नियमित रूप से दिया करता हूं और सूचना ये है कि शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आता है, लेकिन शनिवार को आपको प्रेस क्लिपिंग्स एज इट इज पढ़ने को मिलेंगी। साथ ही शनिवार को ही योजना और कुरुक्षेत्र के आपको टोटल 4 आर्टिकल मिलेंगे जिसमें 2 हिंदी के होंगे और 2 इंग्लिश के होंगे। आपको एक वीकली क्वेश्चन साप्ताहिक प्रश्न प्रोवाइड किया जाता है जो मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होता है ताकि आप प्री की तैयारी के साथ ही साथ मेंस का भी अभ्यास कर सकें और हमारे जो क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाएगा। दोस्तों आइए अब हम न्यूज सेक्शन की बात करते हैं। मुख्य विषय के तहत मैं आपसे ब्लैक होल विषय पर बात करूंगा जिसकी शुरुआत हमने कल की थी। कल वह बात पूरी नहीं हो पाई थी क्योंकि यह जो शीर्षक है, जो विषय है, टॉपिक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसीलिए मैं इस पर कुछ और बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा स्पेशली प्री एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इससे पहले थोड़ी दूसरी खबरों को भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी आपने खबर पढ़ी होगी कि एक जो नमो ऐप टीवी जो आ रहा था उस पर चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगाया है। चुनाव आयोग का मानना है कि इससे आचार संहिता का उल्लंघन होगा। कल भी कुछ इस तरह की घटना एक हम लोगों ने चर्चा की थी और आप लोगों ने न्यूज में भी पढ़ा होगा, सुना होगा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर जो बायोपिक फिल्म आने वाली थी उस पर भी चुनाव आयोग ने रोक लगा दिया था। इसके साथ ही साथ आज एक और दूसरी बात भी है, खासकर उसी बात के तहत मैंने नमो ऐप की भी बात की है। यह सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ फैसला है। 2018 में बांग्ला में एक फिल्म आई थी, उव्यंग फिल्म थी, जिसका नाम था भविष्योत्तर भूत। राइट, इस फिल्म में दिखाया यह गया था कि बहुत से जो भूत हैं वो एक शरणार्थी शिविर में इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वे वर्तमान के बारे में बातें करते हैं, और जब वर्तमान के बारे में बातें करते हैं तो उसमें से कुछ राजनेता भी इस तरह के लोग उस फिल्म में थे। जब वो फिल्म रिलीज हुई तो पश्चिम बंगाल की सरकार को लगा कि इससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो सकती है, तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने बेसिकली फिर इसे रिलीज होने में कोई मदद नहीं की। जैसे जहां फिल्में रिलीज होती हैं सिनेमा घरों में, उनको कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराएगी। नतीजा यह हुआ कि वो फिल्म उस तरह से रिलीज नहीं हो पाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय के लिए पश्चिम बंगाल सरकार पर 20 लाख रुपए का जुर्माना तक लगाया है कि इससे फिल्म निर्माताओं को बहुत नुकसान हुआ है, सिनेमा घर के जो मालिक थे उन लोगों को नुकसान हुआ है, तो उनकी भरपाई की जाए। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर है। मित्रों, ये तो छोटी सी खबर है, लेकिन होता क्या है, देखिए जब कोई भी घटना घटती है तो यह आपके ऊपर है कि उसमें से कितनी महत्वपूर्ण चीजों का इस्तेमाल आप अपनी परीक्षा में करने लायक निकाल पाते हैं। तैयारी करने की बहुत बड़ी टेक्निक होती है। अब जैसे कि जब इस घटना को आप अखबारों में पढ़ेंगे तो कुछ आपको बहुत अच्छी चीजें उसमें पढ़ने को मिलेंगी, और मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि जहां भी आपको इस तरह की अच्छी चीजें पढ़ने को मिले बकायदे आप उन्हें अलग से नोट कर लें और विथ रेफरेंस नोट करें। उदाहरण के तौर पर जैसे कि ये जो बांग्ला फिल्म थी इसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, उन्होंने कहा साफ तौर पर कि यह जो है वैयक्तिक एवं अभिव्यक्ति की आजादी के लिए खतरा है। चलिए, यह बात तो बड़ी रूटीन तौर पर कही ही जाती है, लेकिन जो दूसरी बातें कही हैं मुझे लगता है कि ये बड़े लंबे समय तक आपके काम आएंगी, क्योंकि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिविल सर्विस के लिए। देखिए, उसमें उन्होंने कहा, एक दो उनकी टिप्पणियां आपको पढ़कर सुना रहा हूं, थोड़ा स्लो में पढ़ रहा हूं ताकि आप इसे नोट भी कर लें, तो अखबारों में आज है आप वहां से भी ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है कि कला का उद्देश्य सवाल उठाना और उत्तेजित करना है, लेकिन समाज में असहिष्णुता बढ़ रही है। संगठित समूह मुक्त भाषा एवं अभिव्यक्ति के अधिकार के लिए गंभीर खतरा बन गए हैं। देखिए यहां मैं रिपीट कर रहा हूं, कला का उद्देश्य सवाल उठाना और उत्तेजित करना है। यहां उत्तेजित करना है कि इस रूप में आप मत कह लीजिएगा कि वो नारेबाजी के लिए उत्तेजित कर रहे हैं, हिंसा के लिए उत्तेजित कर रहे हैं। यहां उत्तेजित करने का मतलब है मानसिक उत्तेजना पैदा करना, ताकि आप सोचें चीजों पर, आपको सोचने के लिए चीजें प्रोवाइड करना, सवाल उठाना भी वही है। इसके बाद वो कह रहे हैं संगठित समूह, जो ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, जैसे अगर आप पद्मावत फिल्म की जब रिलीज होने वाली बात थी तो करणी सेना वगैरह की कार्यवाहियों को इसके तहत ले सकते हैं, कि ये जो संगठित समूह हैं, ये सही मायने में जो हमारी जो भाषा होनी चाहिए और हमारी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए उनके लिए बहुत एक गंभीर खतरा बन गए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है और बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणी है, इसका बकायदे संदर्भ के रूप में उपयोग कर सकते हैं। एक बात और सुप्रीम कोर्ट ने कही है, वो भी मैं यहां सुना देता हूं आपको, कि कलाकार की मौलिक दृष्टि अस्तित्व के लिए एक नया अर्थ खोजने की इच्छा है। कितने खूबसूरत तरीके से परिभाषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो कलाकार है वो करता क्या है, कि कलाकार की मौलिक दृष्टि वो एक नई चीज की खोज करता है जो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए एक नया अर्थ देता है, कि हमारे एग्जिस्टेंस में कुछ नया जुड़े, वो नए की तलाश करता है। इस रूप में उन्होंने आर्टिस्ट को, कलाकारों को, और यहां जब मैं कलाकार कह रहा हूं तो इसका मतलब केवल फिल्म के कलाकार नहीं है, उसमें साहित्यकार भी हैं, उसमें चित्रकार भी हैं, उसमें म्यूजिशियंस भी हैं, गीतकार भी हैं, सभी के सभी, ये सभी के सभी आर्टिस्ट कहलाते हैं। तो देखिए कितनी खूबसूरत बात उन्होंने कही है और आज के अखबारों में यह मौजूद है, आप चाहें तो उनका इस्तेमाल बड़े अच्छे ढंग से कर सकते हैं। दोस्तों एक खबर आपने न्यूज में सुनी होगी सूडान के बारे में, एक बहुत छोटी सी खबर है, हो सकता है कि एग्जामिनेशन में न पूछा जाए, इस तरह की चीजें जनरली नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन मैं सजेस्ट ये करूंगा कि जब भी इस तरह की बातें होती हैं तो एक बार आप एटलस पर जाकर के या मैप पर जाकर के उनको एक बार देख लें, क्योंकि देखिए आप जब सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपका केंद्र केवल यही नहीं होना चाहिए कि क्या पूछा जा सकता है, बल्कि वो भी होना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीजें जो आपको इम्पावर्ड करेगी, नॉलेजेबल बनाएगी। तो सूडान को आप जाकर के देखिए नक्शे पर, तो आपको अफ्रीका महाद्वीप में इजिप्ट के नीचे मिश्रा, आप जानते हैं नाम सुना है, उसके नीचे आपको दिखाई दे जाएगा, वहां एक शासक थे, वहां के राष्ट्रपति जो थे उमर अल बशीर, पिछले 30 सालों से वहां शासन कर रहे थे और उन पर नरसंहार के आरोप लगे हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी उन पर केस चल रहे हैं, तो अभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, देश में आपातकाल लगा दिया गया है, बस ये सिंपल छोटी सी बात है। एक खबर आप लोगों ने और भी पढ़ी होगी कि जो ब्रेग्जिट है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, कि उसका का जो अब ब्रेग्जिट से करने का समय, यानी कि वह डेट जब ब्रिटेन यूरोपियन समुदाय से अलग हो जाएगा, अब यूरोपियन समुदाय ने स्वीकार कर लिया है ब्रिटेन की मांग को और 31 अक्टूबर निर्धारित कर दिया गया है कि 31 अक्टूबर तक ब्रिटेन अपने सिस्टम को ठीक करके यूरोपियन समुदाय से अलग हो जाएगा, राइट। दोस्तों आज के करंट कंटेंट में कार्य बल में महिलाएं, जो हिंदू में प्रकाशित एक लेख था वो प्रोवाइड किया गया हिंदी में, इसे आप सब जरूर देख लीजिएगा, वो आपके बड़े काम की बातें होंगी। फ्रेंड्स आइए अब मैं थोड़ी सी बात करता हूं आपसे ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल के बारे में कुछ हम लोगों ने चर्चाएं की हैं, अब उसके कुछ जो तथ्य हैं उनको आधार बना करके प्री एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, मैं उन तथ्यों को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं जो प्री के पैटर्न पर ही होगा। देखिए एक शब्द है इंटरफेरोमेट्री, इंटरफेरोमेट्री, ये इंटरफेरोमेट्री क्या है? आपको मालूम है कि ये जो अभी ब्लैक होल की जो तस्वीर ली गई है, ये तस्वीर बकायदे एक प्रोजेक्ट की तरह ली गई है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट, इसका पूरा नाम है। जगह जगह लगभग 8 टेलीस्कोप लगाए गए थे, उन्हें एक साथ जोड़ा गया था और बड़े विचित्र तरीके से उस सिस्टम को बनाया गया था, सैकड़ों हार्ड डिस्क थे उनमें जो डेटा कैप्चर किया जाता था, वो सैकड़ों हार्ड डिस्क से उनको बकायदे एक सेंटर में, प्रोसेसिंग सेंटर में भेज दिया जाता था, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर में। तो ये जो सारा का सारा जो सिस्टम है ये इंटरफेरोमेट्री कहलाता है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न प्री में पूछ लिए जाते हैं। कुछ और दूसरे शब्द हैं दोस्तों, उनके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए एक शब्द है जिसे आप नाम जनरली सुन भी रहे होंगे, वो है इवेंट हॉरिजोन। ये इवेंट हॉरिजोन बेसिकली क्या है? जो इवेंट हॉरिजोन है, ये आप ये कह लीजिए कि एक ऐसी जगह है, एक बाउंड्री है, जिस बाउंड्री के क्षेत्र से कोई भी चीज बाहर नहीं निकल सकती। आपको मैं इंग्लिश में पढ़ करके सुना दूं, शायद आप और अच्छे से समझ पाए। कभी कभी इंग्लिश की चीजों को हिंदी में सही तरीके से डिस्क्राइब करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। डिस्क्राइब तो किया जा सकता है लेकिन उसके लिए वक्त चाहिए। द बाउंड्री ऑफ द रीजन फ्रॉम विच नो एस्केप इज पॉसिबल इज कॉल्ड द इवेंट हॉरिजन। राइट, वहां से कोई भी चीज बाहर नहीं निकल सकती, यह है इवेंट हॉरिजन। फ्रेंड्स, आप बार बार अखबारों में ये पढ़ रहे होंगे, न्यूज में भी सुन रहे होंगे कि इससे जो है आइंस्टीन की सापेक्षता का जो सिद्धांत था, जो जनरल थ्योरी, जनरल रिलेटिविटी थ्योरी, वो प्रूफ हो गई। तो ये जनरल रिलेटिविटी थ्योरी क्या है, इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। मैं आपको इंग्लिश में पहले पढ़ के सुना देता हूं। सफिशियंट कॉम्पैक्ट मास कैन डिफॉर्म स्पेस टाइम टू फॉर्म ए ब्लैक होल। मैं रिपीट कर रहा हूं, सफिशियंट कॉम्पैक्ट मास कैन डिफॉर्म स्पेस टाइम टू फॉर्म ए ब्लैक होल। समझाने के रूप में कहा जा सकता है कि देखिए, हर वस्तु जिसे हम छू सकते हैं, देख रहे हैं, जो भी चीजें आपको दिखाई दे रहे हैं, उसमें एक मास होता है या भार होता है, वजन होता है। कुछ चीजें होती हैं उसमें वजन होता है और उस वो गुरुत्वाकर्षण पैदा करता है, यानी गुरुत्वाकर्षण की ओर आकर्षित होता है। तो जब सफिशियंट कॉम्पैक्ट मास, जब बहुत बड़ी मात्रा में इस तरह की वस्तुएं बहुत ही कॉम्पैक्ट हो जाती हैं, बहुत ही सघन हो जाती हैं, बहुत ही एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, तो उनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जब इनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इनमें इतनी ताकत पैदा हो जाती है कि स्पेस टाइम को छेद कर, मतलब जो पूरी की पूरी आप कह लीजिए हमारे यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की जो बनावट है, उसको डिफॉर्म कर देती है, मतलब उसमें उलटफेर पैदा कर देती है, उनमें अव्यवस्था पैदा करती है, उसमें तोड़फोड़ मचा सकती है, उसको डिफॉर्म कर देती है, और इसके बाद वो ब्लैक होल बन कन्वर्ट हो जाता है। मतलब वहां इतनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो जाती है कि फिर वहां से बचकर कोई भी नहीं जा सकता। जनरल रिलेटिविटी थ्योरी के तहत ये प्रेडिक्शन आइंस्टीन का था, और अभी जो कल तस्वीरें जारी हुई हैं, ये माना जा रहा है कि उससे आइंस्टीन की यह थ्योरी प्रूफ हो गई है। तो मित्रों, कुछ जो और बातें मुझे आप सबसे करनी थी वो मैंने आप लोगों को बताया है। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, वो आप लोग देख लेंगे। सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं हेमलता सिंह, अनुराग मिश्रा और अनंत सांघी, कानपुर से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। दो दिनों के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।